आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। 12 घंटे की चर्चा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनि मत से पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक। केंद्र सरकार ने कहा राष्ट्र के हित में है ये विधेयक। थाईलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की महाकुंभ की चर्चा, कहा इस आयोजन ने वैश्विक शांति और सामंजस्य का दिया संदेश। निषाद राज गुहा के जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में 579 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। श्रृंगवेरपुर को आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने की घोषणा की। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच आज शाम खेला जाएगा आईपीएल 2025 का 16वां मैच। और अब समाचार विस्तार से। संसद द्वारा पारित वक्फ बिल संशोधन विधेयक को कल राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई। उच्च सदन में विधेयक पर करीब 12 घंटे तक चली चर्चा के बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 95 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। लोकसभा ने 2 अप्रैल की रात में ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। विधेयक पर चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हितधारकों के साथ साथ संयुक्त संसदीय समिति के साथ विस्तृत परामर्श के बाद विधेयक लाया गया है। उन्होंने विपक्षी दलों से इस विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ का लाभ केवल मुस्लिम को ही मिल सकता है और कोई गैर मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को समावेशी बनाने के लिए इसमें मुसलमानों के सभी संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा।
हमने जो नया प्रावधान लेके आया उसमें हर वक्फ बोर्ड में मुसलमानों में जो भी जो रिकॉग्नाइज्ड सेक्ट है सब मिलकर के वक्फ बनेगा। जो पिछले वर्क है वो भी वक्फ बोर्ड में मेंबर होगा और आउट ऑफ 10 मुस्लिम्स 2 मेंबर्स मिनिमम शैल बी वुमेन।
केंद्रीय मंत्री और नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि विधेयक राष्ट्र हित में है।
हम यहाँ डिस्कशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव पार्टी का इंटरेस्ट है या ऑब्जेक्टिव नेशन का इंटरेस्ट है? हमको दोनों के बीच में तय करना है। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में दंके की चोट पर कह सकता हूँ कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हमने कर दिया। ये किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, ये किसी वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के इंटरेस्ट में नहीं है, ये देश के इंटरेस्ट में है।
कांग्रेस के सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि ये विधेयक भ्रामक है और इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इरादे से लाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने भी विधेयक पर सवाल उठाए। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। इसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधान है। इससे संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर वक्फ बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित हो सकेगा। विधेयक में मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने का भी प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेतुंगतान श्रीनवात्रा के बीच बैंकॉक में कल द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई अहम समझौते किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए महाकुंभ की भी चर्चा की।
इस वर्ष भारत में महाकुंभ में भी हमारा पुराना कनेक्शन दिखाई दिया। थाईलैंड समेत अन्य देशों से 600 से अधिक बौद्ध श्रद्धालु इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सभा का हिस्सा बने। इस आयोजन ने वैश्विक शांति और सामंजस्य का संदेश दिया।
थाईलैंड सरकार ने श्री मोदी की यात्रा के अवसर पर 18वीं शताब्दी के रामायण भित्ति चित्रों को दर्शाते हुए एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले हफ्ते प्रस्तावित वाराणसी आगमन की तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेहंदीगंज राजा तालाब में प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों, भाजपा के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था सहित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में प्रस्तावित लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम का प्राचीन मंदिर भव्य एवं दिव्य रूप में एक बार फिर से जगमगाकर अपनी प्राचीन गौरव परंपरा के साथ आगे बढ़ता रहे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके निस्तारण का आदेश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भगवान निषादराज गुहा के जन्मोत्सव पर प्रयागराज में 579 करोड़ रुपए की 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और राजा निषाद से जुड़ी कथाओं और एक जनपद एक उत्पाद ODOP पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्रृंगवेरपुर को आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की वजह से प्रयागराज का चौतरफा विकास हुआ है।
डबल इंजन की ये सरकार अपने पूर्वजों की विरासत को फिर से भव्य रूप से स्थापित करने का काम कर रही है और महाकुंभ के बहाने आज हमारा प्रयागराज स्मार्ट सिटी से भी आगे बढ़ चुका है और प्रयागराज महाकुंभ के बहाने लेटे हुए हनुमान जी का भी एक कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। अक्षयवट कॉरिडोर बन गया है, मात सरस्वती कॉरिडोर बन गया है। एक प्रयागराज की नई मणियां जुड़ी है, नए नए पहचान प्रयागराज को मिले हैं।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान निषादराज वोट सब्सिडी योजना के तहत 1,100 नाविकों को 3,20,00,000 रुपए, मत्स्य संपदा योजना के तहत 1,400 मत्स्य पालकों को 20 करोड़ रुपए और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 138 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों के सर्वेक्षण की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के सर्वेक्षण का कार्य 27 दिसंबर 2024 से चल रहा है। इस बार केंद्र सरकार ने आवास प्लस ऐप के जरिए स्वयं पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान की है। अब तक प्रदेश में 41,50,000 से ज्यादा परिवारों का विवरण आवास प्लस ऐप पर पंजीकृत हुआ है। इस बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने योजना से संबंधित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता, निष्ठा व ईमानदारी के साथ सर्वेक्षण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वेव्स क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, द वेव्स कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप और द वेव्स अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के तहत दो प्रतियोगिताओं के लिए फाइनलिस्ट की घोषणा की है। मेरठ के मोहित शर्मा और बरेली के विंध्यर्ष मिश्र ने फाइनल सूची में जगह बनाई है। 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में आयोजित होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन में विजेताओं की घोषणा की जाएगी। IPL 2025 के 16वें मैच में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच मैच खेला जाएगा। यह मैच लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। प्रदेश के झांसी जिले में आज से 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। 15 अप्रैल तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 31 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सुरेश बोनकर ने बताया कि चैंपियनशिप में टीमों को ABC ग्रुप में रखा गया है, जिसमें ग्रुप बी और सी का लीग मैच 4 से 9 अप्रैल तक होगा। ग्रुप ए की टॉप टीमों में उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पंजाब की टीमें शामिल हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। गंगोत्री के कपाट भी इसी दिन और केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 12 घंटे की चर्चा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनि मत से पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक। केंद्र सरकार ने कहा राष्ट्र के हित में है ये विधेयक। थाईलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की महाकुंभ की चर्चा, कहा इस आयोजन ने वैश्विक शांति और सामंजस्य का दिया संदेश। निषादराज गुहा के जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में 579 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। श्रृंगवेरपुर को आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने की घोषणा की। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच आज शाम खेला जाएगा IPL 2025 का 16वां मैच। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।